हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत की आवाज सुनकर जैसे ही अमन ने पीछे की ओर देखा तो मानो उसकी सांसें ही थम सी गई हों। तारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तारा ने आज ब्लू कलर की गोल्डन वर्क वाली साड़ी पहनी थी जिसमें उसकी खूबसूरती एकदम से बिखर कर सामने आ रहे थे। आज थोड़ा सा एहतराम उसने ये किया था कि उसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत की आवाज सुनकर जैसे ही अमन ने पीछे की ओर देखा तो मानो उसकी सांसें ही थम सी गई हों। तारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तारा ने आज ब्लू कलर की गोल्डन वर्क वाली साड़ी पहनी थी जिसमें उसकी खूबसूरती एकदम से बिखर कर सामने आ रहे थे। आज थोड़ा सा एहतराम उसने ये किया था कि उसने आज अपने बालों को खुला रख दिया था, वरना तारा हमेशा अपने बालों को एक रबर बैंड में पोनीटेल करके रहा करती थी। जिस तरह से धारा रहा करती थी उसी तरह से तारा भी रहा करती थी, लेकिन आज उसने अपने खूबसूरत लंबे घने बालों को खुला छोड़ दिया था जो उसकी पीठ से नीचे पड़ रहे थे। तारा के जिस्म का ज्यादा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसका हल्का हल्का सा पेट दिखाई दे रहा था। तारा के पार्टी में आने से ऐसा लग रहा था मानो उसे पार्टी में कोई जान आकर बस गई हो। अमन बिना पलक झपकाए तारा की ओर ही देख रहा था, वही विक्रांत रंधावा भी तारा को ही देख रहा था। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, क्यों वो उस लड़की की ओर खिंचा चला जा रहा था। उसे इस बात का खुद ही एहसास नहीं था, लेकिन जैसे ही तारा की नज़र अमन पर पड़ी, क्योंकि वो अमन से गुस्सा थी तो इसीलिए उसने अपना मुंह फेर लिया था, और अब तारा के खूबसूरत बाल और उसकी हल्की हल्की सी कमर दिखाई दे रही थी। जैसे ही विक्रांत की नज़र तारा के खूबसूरत बालों और उसकी हल्की हल्की सी दिख रही कमर पर गई तो उसका गला सूखने लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो थोड़ा सा आगे जाए और तारा को चूम ले। वही अमन समझ चुका था कि उसकी प्यारी बीवी, उसकी खूबसूरत बीवी आज उस गुस्से में है, तो इसीलिए वो अपनी पीठ फेर कर खड़ी हुई है। भरी पार्टी में अमन फिर भी उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो इस तरह से तारा के पास जाता तो एक बार फिर से सभी ऑफिस के लोग उसके और तारा के बारे में बातें बनाना शुरू कर देते। यही सोचकर अमन खुद पर कंट्रोल करता हुआ वहीं खड़ा रहा था। तभी तारा मिस्टर रंधावा यानी के विक्रांत रंधावा के पास आई थी और उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके देकर उसे कहा था, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने तारा के मुंह से ये सुना, उसको ऐसा लग रहा था बस सब कुछ थम सा गया हो। पार्टी में जितने भी लोग थे सब थम से गए हों, सब कुछ रुक सा गया हो। विक्रांत को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि उसे तारा के अलावा कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। वही अमन को रह रहकर तारा का मुरझाया हुआ चेहरा याद आ रहा था, क्योंकि तारा उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तभी ये बात अमन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अमन ने एक ब्लैक कलर का चश्मा अपनी आंखों में पहन लिया था और अंदर ही अंदर उसने अपनी आंखों को एकदम लाल सुर्ख कर लिया था। और जैसे ही अमन की आंखें एकदम लाल सुर्ख हुईं, उसने कुछ पढ़कर फूंक दिया था जिससे अचानक वहां का वक्त थम सा गया था। हुआ ये था कि अमन ने अपने जिन रूप में आकर पूरी की पूरी पार्टी को फ्रीज कर दिया था, और जो जिस हालत में खड़ा था, बैठा था, खा रहा था, चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, वो वैसा ही रह गया था, क्योंकि अमन ने उस वक्त एक पल में ही वहां का वक्त रोक दिया था। क्योंकि अमन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था लेकिन अपनी प्यारी खूबसूरत बीवी की नाराजगी नहीं। वही अमित भी समझ चुका था कि अमन ने सब कुछ रोक दिया है, क्योंकि अमित काली शक्तियों का मालिक था तो वो अपनी जादुई शक्ति के द्वारा अमन के रुके हुए वक्त में शामिल नहीं हुआ था। तो इसका मतलब साफ था, अमन वहां जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ देख सकता था। लेकिन एक अजीब बात इन सब में ये भी थी कि विक्रांत रंधावा, जो कि अमन का बचपन का दोस्त था, वो भी फ्रीज नहीं हुआ था। मतलब कि वो भी सब कुछ देख सुन सकता था, लेकिन उसने इस बात का एहसास किसी को नहीं होने दिया था। और तारा परी भी फ्रीज नहीं हुई थी, वो भी सब कुछ देख सुन सकती थी, लेकिन क्योंकि अमन उसका पति था तो उसे इस बात की अब एक्टिंग करनी थी कि मानो वो भी फ्रीज हो गई हो। तभी अमन धीरे से तारा के करीब बढ़ा था। तारा का एक हाथ हवा में था और वो इस तरह से स्टैचू बने हुए खड़ी हुई थी। तभी अमन उसके पास गया। अमित और विक्रांत रंधावा की नज़र उन दोनों पर ही थी, दोनों उसे ही देख रहे थे। जैसे ही अमन तारा के पास गया, कुछ देर तक वो तारा को देखता रहा और उसके बाद उसने उसके खूबसूरत से होठों को चूम लिया और उसके बाद तारा से बोला, अब तुम बोल सकती हो, चल सकती हो, अब तुम्हें फ्रिज रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इजाज़त दी है कि तुम इस रुके हुए वक्त में चल पाओ, जो मर्जी चाहे वो कर पाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो और मुझसे गुस्से में हो, इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रही हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम अमन सिंह राठौड़ की बीवी हो, मेरी जिंदगी हो। अमन सिंह राठौड़ कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी की नाराजगी नहीं, इसीलिए मुझे आज ये सब कुछ रोकना पड़ा। तारा एक बार फिर दूसरी ओर मुंह करके खड़ी हो गई। तारा जानबूझकर गुस्सा हो रही थी, जबकि उसके मन में इस तरह का कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन वो चाहती थी कि आज अमन उसे मनाए। वो रूठी हुई है तो अमन उसे प्यार करे, उसका ध्यान रखे। तभी अमन उसके सामने खड़ा हो गया था और उसने अचानक से तारा के नेक पर किस करना शुरू कर दिया था और बोला था, तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, तो जब तक मेरा दिल शांत नहीं हो जाता तब तक ये सब लोग फ्रीज रहेंगे और ये वक्त जो मैंने रोक दिया है ये रुका रहेगा। अमन की बात सुनकर तारा के गाल शर्म के मारे लाल होने लगे थे और फिर अमन ने बिना देरी के तारा के होठों को एक बार फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया था और उन्हें किस करने लगा था। वो कितनी ही देर तक तारा को किस करता रहा था, तारा ने भी उसके प्यार का दिल खोलकर स्वागत किया था। उसके बाद अमन धीरे धीरे उसकी नेक पर किस करने लगा था और फिर उसे धीरे से वो घुटनों के बल बैठकर उसके दिख रही हल्के हल्के पेट पर, कमर पर किस करने लगा था। तारा भी अब मदहोश होने लगी थी। वही विक्रांत रंधावा और काली शक्तियों का मालिक अमित उन दोनों का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वो दोनों ही तारा को चाहने लगे थे और अमित का तो आज प्लान था कि इस भरी पार्टी में आज वो तारा को अपना बनाएगा, लेकिन इस तरह का बिहेव देखकर उन दोनों के तन बदन में आग लग गई थी। लेकिन विक्रांत तो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस लड़की से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है, क्यों ऐसा लगता है कि बस इस लड़की के आसपास रहूं, क्यों इस लड़की को छूने का, इसे चूमन का दिल करता है, जबकि मैं जानता हूँ कि ये मेरे बचपन के दोस्त अमन की बीवी है, तो क्यों ऐसा दिल करता है कि बस इस लड़की को प्यार करता रहूं। और जैसे ही उन दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, उन दोनों को किस करता हुआ देखकर उन दोनों के अंदर भी एक अजीब सी आग लग गई थी। तभी तारा ने अमन को रोकते हुए कहा था, सर ये क्या कर रहे हैं आप, हम अभी यहाँ पार्टी में हैं, हम घर जाएंगे, आप तब भी मुझे प्यार कर सकते हो, और मैं सिर्फ आपसे इस बात को लेकर गुस्सा थी कि जब मैं आपको प्यार से गले लगाया तो आपने मुझे इतनी बुरी तरह से खुद से दूर किया, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ। तारा की बात सुनकर अमन मुस्कुरा दिया था और उसे एक प्यारा सा लाइट किस उसके गालों पर दे दिया था और बोला था, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज बात को लेकर नाराज हो, लेकिन तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी बच्चा, मैं तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें खुद से दूर करता हूँ, वरना
तुमसे दूर रहना मेरे भी बस की बात नहीं है। अमन की बातें सुनकर तारा को अब रिलीफ मिला था। तब तारा ने अमन से कहा, आप सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दीजिए, अगर इस तरह से रखेंगे तो कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा और पार्टी का पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। तब तारा के बात सुनकर अमन ने कहा था, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। लेकिन तभी तारा की नज़र मालिका पर गई और उसने अमन को रोक दिया और कहा कि रुको, मुझे कुछ करना है। तारा ने देखा मलिका एक हाफ पोजीशन में थी, क्योंकि मलिका एक कुर्सी पर बैठने जा रही थी और वो हल्का सा कुर्सी पर बैठने के लिए नीचे की ओर झुकी थी, लेकिन तभी अमन ने सब कुछ रोक दिया था और सब कुछ फ्रीज कर दिया था। मलिका को लेके तारा के मन में एक शैतानी जाग गई थी, उसने मलिका को हाफ पोजीशन में देख लिया था, इसीलिए उसने उसकी कुर्सी पीछे की ओर रख दिया था। अमित और विक्रांत ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। इसका मतलब साफ था, जैसे ही अमन सब कुछ ठीक कर देगा और मलिका कुर्सी पर बैठने वाली होगी तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। यही सोचकर तारा ने वो कुर्सी मलिका के नीचे से हटा दी थी। अमन तारा को वो शरारत करते हुए देख चुका था, लेकिन तारा ने उसे कहा था, बहुत घूर कर देख रहे थे ना आप उसे, तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी ना, और आपकी सजा आपको घर जाकर मिलेगी। तारा ने बिल्कुल बीवियों वाली बात की थी। अमन मन ही मन मुस्कुराने लगा था और बोला था, लेकिन इसमें तुम उसे बेचारी को सजा क्यों दे रही हो, उसे चोट भी लग सकती है। तब तारा ने अमन से कहा था, आपको उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है, अब आप चुप करके रहिए प्लीज। तब अमन ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तो चुप ही रहूंगा। ऐसा कहते हुए अमन ने अपने हाथ सीधे हाथ की 3 बार उंगलियां बजाई थी उंगलियों से चुटकी बजाई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। और देखते ही देखते सब कुछ पहले जैसा हो गया था। अमित भी देख चुका था कि तारा ने ये क्या किया है, लेकिन वो उसे वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसे वो किसी भी तरह का कोई एक्शन लेता तो उसका भी भेद वहाँ खुल सकता था। ये सब कुछ वहाँ खुल सकता था। रचना।